नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का स्वागत है। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण में मैं हूं अतहर सईद आपके साथ। उषता, तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार सभी हुसैन। सभी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है।
धन्यवाद अतहर साहब।
आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। भारत को राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मिली। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में आयोजित किए जाएंगे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी में खेले गए टेस्ट में भारत 408 रन से हारा। विश्व युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने एक रजत और एक कांस्य पदक जीता। और खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल 2025 के तीसरे दिन कर्नाटक की जैन यूनिवर्सिटी का दबदबा बना रहा। शुरुआत करेंगे राष्ट्रमंडल खेलों से। भारत को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मिल गई है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेल आम सभा में आज भारत के नाम पर मुहर लगी। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल भारत के अहमदाबाद शहर में आयोजित किए जाएंगे। खेल और युवा मामलों के मंत्री मनसुख मांडविया ने 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भारत को मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है।
हमारे लिए ये गेम्स भारत में आयोजित हो रही है, इसलिए मुझे विशेष गर्व भी है, खुशी भी है। मोदी जी के नेतृत्व में स्पोर्ट्स सेक्टर बदल रहा है। पिछले एक दशक में देश के अलग अलग 18 से अधिक सिटी में 22 से अधिक बड़ी टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। ये बता रहा है कि ये देश बड़ी टूर्नामेंट के लिए, वर्ल्ड कप लेवल की गेम्स कराने के लिए अपनी क्षमता को दर्शा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है, यानी कि आने वाले 10 साल में भारत दुनिया में 1 से 10 क्रम के स्पोर्टिंग नेशन में अपना स्थान हासिल करेगा।
आइए अब सुनते हैं राष्ट्रमंडल खेलों पर अपने सहयोगी मुकेश कुमार की ये रिपोर्ट।
अहमदाबाद के अलावा नाइजीरिया का आबुजा शहर मेजबानी की दौड़ में शामिल था, लेकिन भारत बाजी मारने में सफल रहा। राष्ट्रमंडल खेल महासभा में 74 राष्ट्रमंडल सदस्य देशों और क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने भारत की 2030 की दावेदारी का अनुमोदन किया। भारत दूसरी बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। इससे पहले नई दिल्ली में 2010 में इन खेलों का आयोजन किया गया था। पिछले महीने राष्ट्रमंडल खेल कार्यकारिणी बोर्ड ने अहमदाबाद में इन खेलों के आयोजन की सिफारिश की थी। राष्ट्रमंडल खेल को 2030 में 100 साल भी पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में इस ऐतिहासिक मौके पर भारत में इन खेलों का आयोजन बड़ी उपलब्धि है। ये खेल पूरे राष्ट्रमंडल खिलाड़ियों, समुदायों और संस्कृतियों को मित्रता और प्रगति की भावना के साथ एक साथ लाएंगे। पहले राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में आयोजित किए गए थे। अहमदाबाद में 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में 15 से 17 खेल शामिल होंगे। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
सभी, आज ये भारतीय खेल जगत के लिए बहुत बड़ी खुशी और उपलब्धि का दिन है। आज हमें राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी हासिल हो गई है, इस पर आपकी टिप्पणी।
वाकई ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट है पूरे, मतलब एक स्पोर्टिंग मूवमेंट विच वी ऑल शुड सेलिब्रेट। हम सबको सेलिब्रेट करना चाहिए पूरे देश को, क्योंकि 2030 की कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी हमें मिली है। 100 मतलब सेंटेनरी ईयर है, तो ये स्पेशल ओकेजन भी है। और हम तैयार भी थे, जैसे कि बार बार हम लोग जैसे स्पोर्टिंग नेशन में हम लोग उभर कर सामने आ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि हमारे जो खिलाड़ी हैं वो इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो हमारे एशियन गेम्स रहे हों हांगझाउ में, या कॉमनवेल्थ गेम्स रहे हों, या हम ओलंपिक्स में भी अच्छा कर रहे हैं। तो और खास तौर से देखा जाए कि है ना, अब ये हम लोग जब 2036 की जो तैयारी कर रहे हैं ओलंपिक्स की मेजबानी हासिल करने की, और उसमें मतलब कि काफी हम लोग उसमें है ना काफी आगे भी चल रहे हैं उस मेजबानी की दौड़ में, तो ऐसे में 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करना हमारे लिए एक स्टेपिंग स्टोन होगा। तो कि हमें पता चल जाएगा कि हमारा प्रिपेयर्डनेस कितनी है, और स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी। और अहमदाबाद तो देखिए हमारे स्पोर्ट्स कैपिटल ऑफ इंडिया बनके उभर ही रहा है, क्योंकि ज्यादातर जो खेलों के आयोजन है वो वहीं पर ही हो रहे हैं। और वहां पे जो दो वेन्यू को आइडेंटिफाई किया गया है, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव और एक पुलिस अकेडमी स्पोर्ट्स एनक्लेव है। ये दोनों जो हैं, जिसमें स्पोर्ट्स जो सरदार वल्लभ भाई स्पोर्ट्स एनक्लेव, इसमें 3000 एथलीट्स को हाउस करने की रखने की वो एथलीट्स विलेज एक बनेगा। और इसी तरीके से जो पुलिस एकेडमी स्पोर्ट्स एनक्लेव है, वहां पर भी 2 से 2500 एथलीट्स को अकोमोडेट करने का बनेगा। तो ये एक सरकार ने ये एक मतलब पूरी तरीके से तैयार है इस कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन को लेकर, और जल्दी ये वेन्यूज भी तैयार हो जाएंगे। और खासतौर से एक अच्छी बात ये है कि हम लोगों को एक्सपीरियंस है कॉमनवेल्थ होस्ट करने का। हम लोगों ने 2010 में बहुत अच्छा कॉमनवेल्थ होस्ट किया था, और अब 2020 साल बाद हम फिर से कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक गर्व का क्षण है पूरे भारत के लिए, और खासतौर से 2036 के ओलंपिक्स के लिए भी हम ये हमें है ना अब समझ में आएगा कि हम लोग कितने प्रिपेयर्ड हैं और वाकई में दुनिया अब भारत को एक जो एक उभरता हुआ जो स्पोर्टिंग नेशन के तरीके से देख रही है।
सही कहा आपने, 2030 के राष्ट्रमंडल खेल बहुत भव्य होंगे ऐसी हमारी उम्मीद भी है और हमारी जो भारत सरकार है और विशेष रूप से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सपना है सभी कि भारत खेल जगत की एक बड़ी हस्ती बने और इसके लिए वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं और खेलों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर वो सक्रिय भी रहते हैं और हम देख रहे हैं कि उसके परिणाम भी हम देख रहे हैं कि निरंतर हासिल हो रहे हैं। आज भी उन्होंने भारत को मेजबानी मिलने पर बधाई दी है और दिल से बधाई दी है।
बिल्कुल, वह हमारे प्रधानमंत्री जो हैं उनकी खेलों में खास रुचि है, खास दिलचस्पी है। वो जब भी हमने देखा है कि हमारे खिलाड़ी जब भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं वो उनकी हौसला अफजाई करते हैं, कई बार वो वीडियो कॉल्स करते हैं, कई बार वो अपने ऑफिशियल रेजिडेंस पे बुलाते हैं, कई बार वो ट्वीट करते हैं। तो जो हमारे प्रधानमंत्री है वो इतना स्पोर्ट्स को लेकर एक्टिव रहते हैं, उससे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलता है। जो हमारे यहाँ पर जो खेलों के आयोजन को लेकर जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री IOSI इनके जो पदाधिकारी हैं इनको भी एक वो एक नई ऊर्जा मिलती है कि जब हमारे प्रधानमंत्री इतना डीपली इन्वॉल्व है खेलों के आयोजन को लेकर, तो ये एक पूरा एफर्ट है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री का ये एक सपना है कि 2047 तक जो है भारत है ना टॉप 5 नेशंस में आए, स्पोर्ट्स नेशंस में। और हम कहते हैं कि जब हम नेक्स्ट ओलंपिक्स होस्ट अगर हमें मिलती है मेजबानी और हम करते हैं तो हमें टॉप 10 में आना चाहिए और 2047 तक टॉप 5 नेशंस में होना चाहिए स्पोर्ट्स में। तो ये प्रधानमंत्री का जो ये एक मिशन है और विजन है यही है ना, मतलब कि हम सब लोगों को ड्राइव करता है कि हम इस तरीके के भव्य खेलों का आयोजन करें, हमारे खिलाड़ी यहीं पर हमारी सरजमी पर कई सारे पदक जीत के देश का नाम गौरवान्वित करे। जैसे हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जी ने भी कहा है कि ये प्राइम मिनिस्टर का विजन ही है कि जो खेलों का हम इतने जो आयोजन करने कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि 2010 के बाद से कोई बड़ा हमने आयोजन नहीं किया था, लेकिन अभी हमने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप होस्ट करी, बहुत बड़ा आयोजन। अब 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स और अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2036 का ओलंपिक भी हम ही होस्ट करेंगे।
सही बात है, हमें उम्मीद भी है और हम इंतजार भी कर रहे हैं और ये बड़े भव्य क्षण होंगे। सभी भारत के खेलों के विकास के लिए निश्चित रूप से राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन मील का पत्थर साबित होगा।
बिल्कुल, देखिए इसमें एक चीज ये भी जानना जरूरी है कि कॉमनवेल्थ गेम्स का जो एक वो है कि एक इंटरेस्ट जो कहीं ना कहीं लूज हो रहा था, क्योंकि एक बजट का इश्यू आ जाता है। जैसे कि हम बात करें कि आपके 2026 में हमें ग्लासगो में जो होने वाला है वो ओरिजिनली तो वो विक्टोरिया करा रहा था ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन उन्होंने है ना बोला कि हम नहीं करा पाएंगे। सिमिलरली आपका जो 2022 में बर्मिंगम में जो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था वो पहले डरबन के पास था साउथ अफ्रीका। तो ऐसे में भारत का एक कहते हैं ना, भारत ने एक फर्म स्टेप लिया, खुद आगे बढ़कर आया, भारत ने इस आयोजन की जिम्मेदारी ली। और कॉमनवेल्थ स्पोर्ट तो खुद का कहना है कि हमें भारत को ये गेम्स देते हुए बहुत गौरव की बात है।
और अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं क्रिकेट की। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ गुवाहाटी में खेले गए टेस्ट में भारत को 408 रन से हार का सामना करना पड़ा है। इस हार के साथ ही भारत ने श्रृंखला भी 0-2 से गंवा दी है। मार्को यानसन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया और साइमन हार्मर प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किए गए। भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की तालिका में खिसक कर 5वें स्थान पर आ गया है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हैं हमारे सहयोगी शशांक कुमार।
टेस्ट क्रिकेट में रनों के अंतर से ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी हार है। 549 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम सिर्फ 140 रन पर ही सिमट गई। भारतीय टीम ने आज 5वें दिन की शुरुआत 2 विकेट पर 27 रन से की थी। दक्षिण अफ्रीकी स्पिनर सिमोन हार्मर के सामने भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह से फेल रहे। हार्मर ने 37 रन देकर 6 विकेट लिए। सिर्फ रविंद्र जडेजा 54 रन बनाकर शीर्ष स्कोरर रहे। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 489 रन बनाए थे। कुलदीप यादव ने 4, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा तथा मोहम्मद सिराज ने 2-2 विकेट लिए थे। भारतीय टीम पहली पारी में 201 रन पर सिमट गई थी और 288 रन से पिछड़ रही थी। वहीं दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी 5 विकेट पर 260 रन बनाकर घोषित कर दी थी। कोलकाता में 30 रन से जीतने वाली दक्षिण अफ्रीका ने इस रिकॉर्ड जीत के साथ श्रृंखला 2-0 से अपने नाम की। शशांक कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
आज का दिन सभी भारतीय टेस्ट क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। हम न केवल ये टेस्ट मैच हारे बल्कि टेस्ट श्रृंखला भी हमने गंवा दी। मैं जानना चाहता हूं कहां चूक हुई है, खेल पत्रकार खेल विशेषज्ञ की हैसियत से आपसे जानना चाहता हूं।
मतलब बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही है, मतलब अब क्या ही बोले, मतलब इतना निराशाजनक प्रदर्शन, वो भी हमारी ही धरती पर। मतलब सब कुछ आपके, मतलब जिसे सब कुछ आपके फेवर में था, टेलर मेड स्पिन पिचेस आपने बनवाई, चाहे एडन गार्डन्स हो कोलकाता या गुवाहाटी में, क्यूरेटर्स को आपने जैसे पिच बनाने को कहा उन्होंने वैसे बनाई। आप तो हमेशा से स्पिन से डोमिनेट करते हैं, हमने देखा है कि पहले भी आपने जो सीरीज जीती है किस तरीके से सामने वाली टीम को आप धरियाशी कर देते थे अपनी स्पिन से, आपके बल्लेबाज कई इतने बड़े बड़े स्कोर्स खड़े कर देते थे कि मतलब सामने वाली अपोजिशन बिल्कुल जिसके मतलब अपने हथियार डाल देती थी। लेकिन यहां पर तो मतलब इतना निराशाजनक प्रदर्शन, तो मतलब ये बहुत ही बड़ा सवाल उठता है चयनकर्ताओं पे, गौतम गंभीर पे और इस टीम की अप्रोच पर भी, क्योंकि ये मतलब देखिए पिछले सात टेस्ट मैचेस में जो भारत की धरती पे हुई उसमें पांचवी हार है ये, पिछली लास्ट थ्री सीरीज में से ये दूसरी हमारी सीरीज हार है। 3-0 न्यूजीलैंड हमें हरा के गया, अब दक्षिण अफ्रीका में हरा के गया, तो ये बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन।
क्या ये बेहतर टीम संयोजन नहीं था आपकी नजर में?
नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर मुझे लगता है कि है ना जो टीम सिलेक्शन था वो बिल्कुल ठीक नहीं था। आप खुद देखिए कि आपके स्टैंडिंग कैप्टन है ऋषभ पंत, आपको लीड करना था। आप पहली इनिंग्स में उनका शॉट देखिए, छक्का मारने के बाद उन्होंने विकेट गवा दिया। इस तरीके के जो शॉट सिलेक्शन है, यही दक्षिण अफ्रीका की टीम के बल्लेबाज हैं जो मतलब कि हर इनिंग्स में चल रहे हैं। इतना बड़ा लक्ष्य आपको दे दिया, इसी 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 पिच पे वो रन बना रहे हैं और उसी पिच पे आप लोगों से है ना, मतलब आप 140 बना रहे हैं, कभी आप कहा क्या कर रहे हैं आप समझ ही नहीं आ
अच्छा,
रहा
मतलब। एक सवाल ये है सभी के, अब भविष्य के लिए किस तरह की तैयारी की आवश्यकता आप महसूस करते हैं?
देखिए मेरे ख्याल से तो आपको थोड़ा सा अगर हार्श स्टेप्स लेने पड़ेंगे, थोड़ा टफ कॉल लेनी पड़ेगी बीसीसीआई को। मैं कहूंगा कि आपको है ना रेड बॉल क्रिकेट और व्हाइट बॉल क्रिकेट के कोचेस को अलग कर देना चाहिए। वीवीएस लक्ष्मण का नाम पहले भी उठा था, बहुत बार आया है, तो मेरे ख्याल से वीवीएस लक्ष्मण को रेड बॉल क्रिकेट की कमान दे देनी चाहिए एज अ कोच, और गौतम गंभीर व्हाइट बॉल क्रिकेट में करते रहे क्योंकि रिजल्ट्स भी आए हैं हमारे। तो इस तरीके से कुछ टफ कॉल्स नहीं पड़ेगी, और आपको कुछ एक दो खिलाड़ी ऐसे हैं, आप ये नीतीश कुमार रेड्डी का एक तो आप छोड़ दीजिए, उनको पता नहीं क्यों ऑलराउंडर आपने बना के खिला रहे, तो कुछ कुछ आपको टफ कॉल्स लेनी पड़ेगी।
और अब बात टेबल टेनिस की। रोमानिया में आयोजित विश्व युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप ITTF में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक रजत और एक कांस्य पदक जीता। अंडर 19 लड़कों की टीम ने चीनी ताइपे को 3-2 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। हालांकि खिताबी मुकाबले में उन्हें जापान से 0-3 से हार मिली और टीम को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारत के अंडर 15 लड़कियों की टीम ने भी शानदार खेल दिखाया और वे जर्मनी को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंची। हालांकि यहां उन्हें दक्षिण कोरिया से 0-3 से हार मिली, लेकिन टीम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। सभी आज रोमानिया में भारतीय युवा खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। जहां तक टेबल टेनिस का प्रश्न है, नतीजे में भारत को एक रजत और एक कांस्य पदक हासिल हुआ। इस प्रदर्शन को आप कितना उत्साहवर्धक मानते हैं?
नहीं बिल्कुल, देखिए टेबल टेनिस तो राइज कर ही रही है, हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर ही रहे हैं, और ये जो अपने ये स्टार कंटेंडर्स इवेंट्स होते हैं या कंटेंडर्स इवेंट्स होते हैं जो बाहर जाते हैं, वो उसमें सब अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। छोटी सी चीज में यही कहूंगा कि अगले महीने वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल है टीटी का, उसमें पहली बार इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट करते हुए हमारी एक टीम खेलेगी वहां पर, दिया चिटाले और मानु शाह की, तो ये बहुत अच्छा टीटी के लिए बहुत अच्छा संदेश है।
और अब खेलो इंडिया की बात करते हैं। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल 2025 के तीसरे दिन आज देशभर के विश्वविद्यालयों से आए खिलाड़ियों ने मैदान पर पदकों के लिए जबरदस्त प्रदर्शन किया। आइए सुनते हैं हमारे जयपुर संवाददाता की ये रिपोर्ट।
राजस्थान में चल रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में ट्रैप शूटर नीरू डांडा और आदित्य भारद्वाज ने गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को शॉटगन के चारों मेडल दिलाने में मदद की, जबकि उनके साइकिलिस्ट ने दोनों इंडिविजुअल रोड रेस जीतकर अपने गोल्ड मेडल संख्या को दोहरे अंकों में पहुंचा दिया। नीरू ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में लगातार चौथा व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीता, जिसमें उनका फाइनल स्कोर 47 पॉइंट रहा। मेडल टेली में 11 स्वर्ण पदकों के साथ कुल 24 पदक जीतकर जैन यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है। अमृतसर की गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी 10 स्वर्ण सहित कुल 22 पदक जीत दूसरे पायदान पर है।
अश्वथा, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। सभी हुसैन, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर आपने हमारे साथ विस्तार से चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद।
शुक्रिया अतर साहब।
अश्वथा, इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम के साथ अतहर सईद को दीजिए अनुमति। नमस्कार।